रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। कोई बात नहीं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गरुड़ जी महाराज को शंकर भगवान ने काकभूषण जी के पास भेज दिया। पार्वती जी ने पूछा था कि महाराज ये रामचरितमानस आप सुना देते, आपने गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास क्यों भेजा, वो अच्छी जगह ही आया था। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, देखो पार्वती, रघुपति कृपा मर्म में पावा, भगवान की कृपा का रहस्य मैं जान गया हूं, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि यदि किसी में कोई अभिमान पैदा हो गया हो तो वो अभिमान नष्ट होना चाहिए। सो खोवे चाहे कृपा निधाना, तो इसमें अभिमान पैदा हो गया। अब ये पक्षी राज है, पक्षियों का राजा सबसे बड़ा पक्षी, और काकभूषुंड है वो पक्षियों में सबसे नीचा पक्षी, कौवे से नीचा कोई नहीं होता और गरुड़ से ऊंचा कोई नहीं होता। पर गरुड़ जी को अभिमान हुआ, उस अभिमान को तोड़ने के लिए काकभूषण जी के पास जाना यही पर्याप्त है। वे उस काकभूषण जी के पास जाएंगे, विनम्रता से बोलेंगे, बस इतने में उनका अभिमान नष्ट हो जाएगा। बड़ा छोटे के पास जाए और विनय करने लग जाए तो अभिमान खत्म हो जाएगा। यदि मैं उसको सिखाता तब उसके मन में ये अभिमान होता कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं और भगवान शंकर से मैं कथा सुनने वाला हूं, मामूली थोड़ा ही हूं। इसलिए कछुतहिते पुनि मैं नहीं राखा, ये सब बात अंदर समझ करके उसको तो मैंने नहीं कहा पार्वती, उसके पास मैंने भेज दिया और मैंने कहा कि देख भाई, समुझई खग खग ही की भाका, पक्षी की बात पक्षी पहचान सकते हैं, तुम काकभूषण जी के पास जाओ। देखो पार्वती, गरुड़ जी कैसे हैं, कैसे त्रिभुवन पति कर जान, जान माने वाहन, अपने मारवाड़ी शब्द है कि जान चढ़ की गई। जान चढ़ने को मतलब है कि जिस सवारी पर चढ़ा वो जान है, वाहन है जान। जैसे मोटर पे चढ़ गई कोई, किया गई कोई, किया जान चढ़ गई, हाँ चढ़ गई, वो जान चढ़ने को अर्थ है कहीं न कहीं वाहन में बैठ रवाना होगी। आ जान है राम जी री, जान है गरुड़ जी भगवान विष्णु री, और गरुड़ जी कितने ज्ञानी, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। त्रिभुवन के वो वाहन, त्रिभुवन पति मन भगवान के वाहन, और ताई मोह माया, उसी को ही माया ने मोह लिया तो नर पावर कर ही गुमान। अरे मनुष्य तू क्यों किस घमंड में बैठा है भाई, ये माया बड़ों बड़ों को ठग ली जो हरदम भगवान के पास रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान के पास रहने मात्र से अज्ञान दूर नहीं होता, अज्ञान दूर होता है संत के पास रहने से, संत के पास सत्संग करने से। ये रहस्य बता रहे पार्वती जी को शंकर भगवान। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं शिव विरंच कहूं मोह ही, इस माया को लेकर कभी घमंड मत करना कि हम माया को जीत के ब्रह्मा जी हैं शिव जी हैं, वो भी इसके अंदर फंस गए हैं। अस जी जानी भजई मुनि मायापति भगवान, इस माया से पिंड छुड़ाना हो तो मायापति भगवान को भजो। आपके घर में कोई कुत्ता पाल रखा है और पास में जाते ही भाव 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 कुत्ता जोर जोर से जो भौंकता है और उछल उछल के आता है तो आवाज लगा रहे भाई थारे कुत्ता न साम भाई थारे कुत्ता न, तो अंदर से मालिक आवे अरे चुप चुप, तो वही वो कुत्ता अपने मालिक के पैरों में लिपटा रहता है। ऐसे ही ये माया है, ये भगवान की कुतिया है। इस कुतिया को ये कुतिया भूखती रहती है, इसको देख करके अपने को बचाना हो तो भगवान से प्रार्थना करो महाराज थारी कुतिया न थे बांध रखो अमन फाड़ काड़ी बांध रखो। इस प्रकार से माया से बच करके चलो। अब गरुड़ जी महाराज जहां काकभूषण जी थे वहां पहुंच गए। क्या बताएं पार्वती, उस शैल पर पर्वत पर गए ना, पर्वत पर जाते ही ऐसी शांति ऐसा आनंद कि माया मोह सोच सब गया, वो सब कुछ खत्म हो गया, उनका मोह माया सब खत्म हो गई। वहां पर वो तालाब था, उस तालाब के किनारे गए हमारे गरुड़ जी महाराज और तालाब के किनारे जाकर वहां वो जल वगैरह पिया और समाधि सी लग गई एकदम। और फिर जो बट का पेड़ था वहां गए, आनंद की लहरें उमड़ने लगी और गरुड़ जी देखने लगे अरे बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए यहां, क्या आप जानते हो क्या? अरे मैं तो बहुत घूमता हूं भगवान को ले ले करके सबको जानता हूं, अरे इतने बूढ़े बूढ़े पक्षी आए यहां, काकभूषण जवान और ये बूढ़े बूढ़े पक्षी, वृद्ध बृहद वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए और सुने राम के चरित सुहाए। वहां क्या हुआ, काकभूषण जी ने एक बार पूरा रामचरित्र सुना दिया उनको। अब रामचरित सुनने के बाद पांच बजते अपन तो रवाना हो जावा क्योंकि आज की कथा, तो वह लोग कहेंगे वह कि मान तो और सुनाओ। सुनाने वाला तो सुनाते सुनाते उबता नहीं, सुनने वाला सुनते सुनते उबता नहीं, वह बैठे ही और सुनाओ अच्छा सुनाते हैं। तो वो काकभूषण जी महाराज कथा आरंभ करे सोई चाह जो ही वो बैठ करके रामाय राम भद्राय ऐसा बोलने लगे, एक काव ये गरुड़ जी महाराज आ गए। तेही समय गए वो खगनाहा और गरुड़ जी को देखा तो काकभूषण जी रे हमारे पक्षी राज आ गए, हमारे राजा आ गए, हमारे राजा आ गए, सब खड़े हो गए साहब। आइए आइए गरुड़ जी महाराज आइए आइए, बड़ी कृपा की आप। उनको बैठाया आसन दिया और बड़े प्रेम से कहा हे महाराज भगवान के वाहन हैं आप, आज इन नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए, जब से भगवान राम का अवतार हुआ है तब से आपके दर्शन नहीं हुए, आवश्यकता भी नहीं पड़ी, मैं तो आज कृतार्थ हो गया प्रभु पूर्ण दर्शन कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म शेषनाग लक्ष्मी और विष्णु सबके दर्शन हो गए, आप ही के दर्शन बाकी थे। शेषनाग तो हो गए लक्ष्मण जी महाराज, शंख चक्र हो गए भरत और शत्रुघ्न जी महाराज, राम जी स्वयं विष्णु है ही, सीता जी लक्ष्मी जी है ही, केवल आप ही तो बचे थे, आज आपके साक्षात दर्शन हो गए महाराज, आज्ञा दीजिए इस सेवक को आपने कैसे याद किया। अब गरुड़ जी महाराज के ऐसे प्रेम से झर झर आंसू बहने लगे, कहने लगे एक काकभूषण जी
तुम तो वास्तव में कृतार्थ के स्वरूप हो, अपना जीवन सफल कर चुके हो, तुम्हारी स्तुति मैं क्या गाऊं। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मुख से तुम्हारी स्तुति गाई है। मैं यहां क्यों आया हूं इस बात को मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम्हारा यह आश्रम देखा, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, मेरा मोह संशय भ्रम सब समाप्त हो गया। अब एक काम करो काक भसुल जी, हमको राम जी की पवित्र कथा सुनाओ। बड़ी व्याकुलता हो रही कथा सुनने की। राम जी की कथा बड़ी सुख देने वाली है, दुख पुंज हरने वाली है, इसलिए मुझे कथा सुनाओ। मैं हाथ जोड़ करके बार बार आपसे प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं, कथा सुनाओ। गरुड़ जी में इतनी सरलता, गरुड़ जी के वचनों में इतना प्रेम टपकने लगा तो काक भूषण जी के मन में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। देखो वक्ता होता है ना, वो अपनी शक्ति से कभी नहीं बोलता है, श्रोताओं के भाव शक्ति से ही वक्ता बोल सकता है, नहीं तो वक्ता अपने कोई बोलने की कला से कि विद्वत्ता से या कोई अपनी जानकारी से नहीं बोलता। श्रोताओं के जो भाव होते हैं, अंतर्यामी भगवान उन भावों को बढ़ाने के लिए वक्ता के हृदय से बात निकलवाते हैं, क्योंकि वक्ता स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है, ये बात मेरे मन में कभी सोची नहीं, बात निकल गई कैसे गई, कभी नहीं सोची ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई, ये बात पैदा कैसे हुई। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें पैदा होती हैं, तो वो क्यों होती है, वो भगवान बुलाते हैं। और जो वक्ता होकर के बोलता है उसके कुछ नहीं होता, डफोल शंख होता है। तो भयउ तासु मन परम उत्साह, काक भूषण जी के मन में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और राम जी का उन्होंने गुणगान गाया। हे भवानी, पहले ही पहले तो उन्होंने रामचरित्र रूपी सरोवर का बखान किया और फिर वही जो तुमने हमसे पूछा था ना कि नारद जी को मोह कैसे हुआ, राम जी ने कौन सा, विष्णु ने क्या कहा, अपराध रमापति की ना, तो वो नारद जी का मोह का प्रसंग बताया है। और फिर देखो एक शब्द पर ध्यान देना, संता सिद्ध जाओ, थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर की बात। कहे सी बहुरी रावण अवतारा, अब रावण के अवतार की बात आ गई। रावण का अवतार, अब लोगे अवतार रावण का क्या, अवतार तो हमने आज तक भगवान का सुना है। भगवान का अवतार होता है, रावण का अवतार हुआ क्या हुआ साहब, तो ये क्या है, लिखा है रामायण में कहे से बहुरी रावण अवतारा, तो ये अवतार क्या है यहां कि भगवान ने वहां विष्णु लोक में बैठ करके विचार किया कि देखो भाई अपने राम तो मैं बनूंगा, सीता कौन बनेगी, लक्ष्मण जी ने कहा मैं बनूंगा, लक्ष्मण जी कौन बनेगा, शेषनाग ने कहा मैं बनूंगा, भरत कौन बनेगा, तो शंख ने कह दिया मैं बनूंगा, और जो है शत्रुघ्न कौन बनेगा, चक्र ने कह दिया मैं बनूंगा, ये तो सब बन गए, लेकिन हमारे रावण कौन बनेगा जिसका तो संसार में बड़ा भारी अपयश होगा। तो भगवान का एक बहुत अंतरंग सखा था, प्रतापी सखा, प्रतापी, उसने कहा कि रावण का क्या अभिनय करना रे, रावण का अभिनय करना बड़ा मुश्किल है, दुनिया में बदनाम हो जाओगे। कोई बात नहीं महाराज, पर आपका नाम लेंगे वहां मेरा नाम तो लिया, ये तो होगा, जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा नाम आएगा ही आएगा, रावण तुमको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो प्रतापी जो सखा था, जो प्रताप भानु के नाम से विख्यात हुआ, वो ही रावण के रूप में अवतार लिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आगे इस रामचरितमानस में लिखा है
कि मानस रोगों का जहां वर्णन किया है वो सो चमगादर होई अवतर ही। वे ऐसे लोग जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं वे चमगादड़ होकर अवतार लेते हैं। तो कहते एक अवतार भगवान के लिए अवतार होता है नित्य वस्तु का अवतरण। तो जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। इस हिसाब से देखा जाए आपका और हमारा सबका इस मानव शरीर में अवतार हुआ है। जैसे भगवान का अवतार, अब शरीर भगवान का दिव्य है और हमारा मायामय है क्योंकि हम माया से लिपटे रहते हैं, लेकिन भगवान माया से रहित है, वह अवतार है। तो पहले रावण का अवतार बताया, फिर राम जी का अवतार बताया, राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन बताया काकभूषण जी ने, और फिर विश्वामित्र जी का आना बताया, फिर राम जी का विवाह बताया, और फिर राम जी के अभिषेक का प्रसंग चला कि भाई उनका राजगद्दी होने वाली है, राजगद्दी का प्रसंग चला। फिर केके के द्वारा वरदान मांग लिया गया, फिर राम जी वन में चले गए, फिर केवट का अनुराग आया, गंगा जी के पार चले गए, वाल्मीकि ऋषि मिले, उन्होंने चित्रकूट में जाने के लिए कहा, चित्रकूट में जाकर भगवान रह गए। इधर सुमन जी महाराज नगर में आए, दशरथ जी का मरना हुआ, ननिहाल से भरत जी लौटे, भरत जी का प्रेम तो बताया ही नहीं जा सकता है। अंतिम संस्कार दशरथ जी महाराज का किया, फिर भरत जी महाराज चित्रकूट आए, भगवान के समझाने पर चरण पादुका लेकर अयोध्या पधार गए भरत जी। ये अरण्य, ये अयोध्या कांड पूरा हुआ। फिर इंद्र का बेटा कौवा बनकर के आया और राम जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में उसने जो कुछ किया सो वो बताया ही। फिर भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में गए, फिर उनसे आज्ञा लेकर आगे गए, विराट का वध किया, फिर सर्वंग का शरीर चला गया, फिर सुतीक्ष्ण की भक्ति देखी, फिर अगस्त्य जी के साथ सत्संग किया, फिर दंडकारण्य में आए, गीदराज के साथ मित्रता हुई। कितनी अच्छी कथा लग रही है, ऐसी यूं झूलती हुई लगी जैसे कोई झूले में झूलता हो। मुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। भगवान पंचवटी में रहे और फिर वहां भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया और फिर सूर्य सूर्प नखा। अब देखो सूप नखा जिमी कीनी कुरूपा, सूप नखा को कुरूप बनाया। कुरूप क्यों बनाया? सूर्प नखा यदि अपने असली रूप में आती तो भगवान उसके नाक कान नहीं कटवाते, आज्ञा नहीं देते। भगवान सुंदरता का रूप बनाई, बहुत सुंदर बनकर के आई, तब नाक कान काटे भगवान ने। तो तेरे ही रूप में रहना, मेरे यहां तू रूप बदल करके आती है तो तेरे ही रूप में आती, हम समझते कि असुरी है क्या है, तेरे से बात ही नहीं करते, तुझे क्षमा कर देते, जो कुछ करते सो करते, तू मेरे सामने रूप बना के आई, नाक कान काटती उसके, तेरा ऐसा रूप तो है नहीं। तो सूप नखा जिमी कीनी कुरूपा। फिर खरदूषण का वध हुआ, रावण को पता चला, वो मारीच के पास आया और फिर उन्होंने बैठ करके षड्यंत्र रचा और फिर माया से बनी हुई सीता का हरण हुआ और फिर भगवान के विरह का वर्णन हुआ। गीदराज के साथ गीदराज की भगवान ने अंतिम क्रिया की, फिर कबंद को मारा, सबरी को उत्तम गति प्रदान की और फिर भगवान का विरह वर्णन हो रहा है और फिर पंपा सरोवर चले गए, वहां नारद जी के साथ जो है बातचीत हुई। ये यहां अरण्यकांड पूरा हो गया। अब हनुमान जी के साथ मिलना हुआ, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, बाली का प्राण वध हुआ, सदेव प्रबाली का वध हुआ, फिर भगवान सुग्रीव को राजगद्दी पर विराजमान करा करके स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। फिर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन हुआ। भगवान ने क्रोध किया, बंदर लोग सब डर गए और फिर सीता जी की खोज के लिए सब भगवान के पास आए और खोज के लिए निकल गए। एक विवर में प्रवेश करने के बाद वे समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां संपाति जटायु का भाई मिला। सुनी सब कथा समीर कुमारा। वहां से सब कथा सुनने के बाद समीर कुमार, समीर माने वायु, वायु पुत्र हनुमान जी, उन्होंने समुद्र को लांघा। और अब देखो ये बात बार बार याद करनी चाहिए कि हनुमान जी ने समुद्र लांघा तो बड़ी महिमा है हमारे रामायण में। ओह समुद्र को लांग दिया हनुमान जी, समुद्र को, अरे समुद्र को लांग दिया रावण ने, समुद्र को लांघा रावण के राक्षसों ने, समुद्र को लांघा विभीषण ने, विभीषण के साथ वालों ने, रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे सब समुद्र लांग करके ही आए थे। हनुमान जी ने समुद्र लांग लिया, कौन सी बड़ी बात, बड़ा बखान हो रहा है, क्यों हो रहा है कि सब अपने अपने मतलब से लांग करके आए। हनुमान जी ने राम जी का काम करके और राम जी का काम करने के लिए समुद्र का लंघन किया, इसलिए वो बड़ी बात हो गई। इसलिए भगवान का काम जो होता है वो बड़ा हो जाता है। वहां लंका में जाकर उन्होंने सीता जी को बड़े स्नेह से धैर्य दिलाया और लंका को जलाया, रावण को ज्ञान दिया और फिर उसके बाद समुद्र का लंघन करके जहां राम जी महाराज विराजमान थे वहां आकर सीता की कुशल क्षेम सुनाई और सारी सेना लेकर के कुशल क्षेम सुनाई। सुंदरकांड चल रहा है, सेना सहित सब समुद्र के किनारे राम जी महाराज आ गए। फिर इधर विभीषण जी आए, विभीषण जी ने आकर के भगवान की शरणागति स्वीकार की और समुद्र के ऊपर भगवान ने निग्रह कर लिया। इधर सुंदरकांड पूरा हुआ। अब लंका कांड चलता है। सेत उबाउंद कपि सेन जिमी उतरी सागर पार। सेतु बनाया और सागर पार करके सेना उतर गई और अंगद जी फिर दूत बन करके गए। फिर खूब जो है छमाछम युद्ध हो गया। अरे बच्चा बोलो मत। खूब युद्ध होने लगा और उस युद्ध के अंदर कुंभकर्ण का और मेघनाथ का खूब बल पौरुष बताया गया और उनकी मृत्यु बताई गई। बहुत से राक्षस मारे गए और फिर रावण भी मारा गया। मंदोदरी का शोक हुआ, विभीषण को राजगद्दी मिली, सीता जी राम जी के पास आई, देवताओं ने स्तुतियां गाई, पुष्पक विमान पर चढ़े, अयोध्या में आकर विराजमान हुए और राम जी का अभिषेक हो गया। इस प्रकार ये पूरी राम कथा उनको सुनाई। सुनते ही भाई काकभूषण जी महाराज के मुख से कथा सुनी तो गरुड़ जी महाराज यूं पंख यूं फैल गए। देखो कबूतर है ना, तब खूब खुश होता है, यूं पंख यूं फैला करके बैठता है जमीन पर, खूब खुश होता है, पंख यूं पसारता है। मोर तो ऊंचा करके नाचता है और ये कबूतर है यूं पसार के बैठता है। कभी कभी चिड़िया भी यूं बैठती, खूब खुश होती है। तब ऐसे ही खूब खुश हो गए गरुड़ जी और कहने लगे, वाह काकभूषण जी वाह, मेरा सारा संदेह दूर हो गया भगवान का चरित्र सुनने से। संदेह दूर हो गया इतनी बात नहीं है, जो जो आप रामलीला कह रहे थे त्यों त्यों वो रामलीला मेरे मन में बनती जा रही थी, मेरे मन में राम जी के प्रति प्रेम पैदा हो गया। हे वायस तिलक, हे काक्ष काक श्रेष्ठ, हे वायस तिलक, जो मेरा मोह भगवान को रणभूमि के अंदर सर्प बंधन से बंधा हुआ देखकर पैदा हुआ था और मेरे मन में ये बात आई थी कि चिदानंद संदोह भगवान ये सर्प बंधन से सर्प के बंधन में कैसे आ गए, ऐसा जो मेरा ये मोह हुआ था, भगवान का चरित्र देखने से मोह पैदा हुआ था, बड़ा भारी संशय पैदा हुआ था। वो संशय बड़ा अच्छा हुआ, पैदा हुआ ताकि मैं आपकी शरण में आया। जो व्यक्ति पहले से ही वृक्ष की छाया में बैठता है उसको वृक्ष की छाया का महत्व नहीं मालूम देता, पर जो खूब गर्मी के अंदर भटकता भटकता पसीने में तरोबतर होता हुआ वृक्ष के नीचे आता है, आ ओह बहुत अच्छा भाई, वृक्ष बड़ा अच्छा है। ऐसे ही मेरे मन में ऐसा मोह पैदा नहीं हुआ होता, व्याकुलता पैदा नहीं हुई होती तो मैं क्यों ये रामकथा सुनता। ये अच्छा हुआ मेरे मन में मोह पैदा हुआ, व्याकुलता पैदा हुई, छटपटाहट हुई, ताकि मुझे आज राम कथा का अमृत पीने को मिला। हे काकभूषुंड जी, हमारे पर भगवान की कृपा है, इसकी पहचान क्या है कि परम शुद्ध संत के दर्शन हो जाए, यही समझना चाहिए हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। आज राम जी की मेरे पर कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए, सारा संदेह मेरा नष्ट हो गया। ऐसा विनय भरा, अनुराग से भरा हुआ भाव जब ये गरुड़ जी महाराज बोलने लगे तो काकभूषण जी गदगद हो गए, उनके नेत्र प्रेम जल से भर आए और काकभूषण जी महाराज जो है फिर कहने लगे कि देखो महाराज, बहुत ध्यान से, श्रोता सुमति सुशील सुची कथा रसिक हरिदास पाए उमा अति गोप्यमापी सज्जन करहि प्रकाश। यदि श्रोता सुबुद्ध होता है, अच्छी बुद्धि वाला है, समझदार है, सुशील होता है, पवित्र हृदय वाला होता है, उसके अंदर भगवान का प्रेम रस भरा हुआ होता है, उसके अंदर श्रद्धा भाव प्रेम भाव रहता है, तो संत महापुरुष अपने हृदय में गोपनीय से गोपनीय बात भी उसके सामने प्रकट कर देते हैं, छिपाते नहीं है। है महाराज, हाँ देखो काकभूषुंड जी ने अपनी गोपनीय बातें, भगवान की गोपनीय गोपनीय बातें जो किसी को भी नहीं बताई थी, वो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को बताई। क्या बताया महाराज? गरुड़ जी ने क्या कहा सुनो पार्वती। गरुड़ जी ने कहा, काकभूषण जी ने कहा, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ जी महाराज, आपका भगवान में बड़ा प्रेम है, आप मेरे लिए परम पूजनीय हैं, आप भगवान के वाहन हैं, आपके कहां माया हो सकती है, कहां संशय हो सकता है, आपने तो केवल मेरे पर कृपा करने के लिए रामचरित्र सुनाने की प्रार्थना करके निवेदन करके मुझे मौका दिया है, ये आपकी कृपा है। और भगवान राम जी की मेरे पर कृपा देखो, उन्होंने आपको यहां भेज करके मेरे मुख से राम जी का चरित्र कहलवा दिया और मेरी बड़ाई भगवान ने करवा दी। ये सब बड़े पुरुषों की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये जो आप कहते हो कि मैं भगवान की माया में मोहित हो गया, तो ये कोई खास बात नहीं लगी है। आप इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि नारद जी देख लो, शंकर जी को देख लो, ब्रह्मा जी को देख लो, सनकादिकों को देख लो, बड़ों बड़ों को देख लो, इस माया के चक्र में सब आ गए। आप ही बताओ, इस मोह ने किसको अंधा नहीं बनाया, इस काम ने किसको नहीं नचाया, तृष्णा ने किसको पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसको नहीं जलाया, और बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, तपस्वियों को देखा, पंडितों को देखा कि वे सब लोभ से अपमानित होते आए। बड़े बड़े ज्ञानियों वेद शास्त्र बोल दे, बिना देखे बोल दे कर दे, लेकिन उनको भी पैसे के लिए मरते डरते देखा, तो कीन्य के लोभ विडंबना, लोभ ने किसको अपमानित नहीं किया।
लक्ष्मी ने किसको अभिमान के अंदर टेढ़ा नहीं किया? अभिमान आता ना आदमी ही चलता है टेढ़ा टेढ़ा है। क्यों? श्रीमद वक्र न की न कही, नहीं तो बेचारा गरीब आदमी सीधो सीधो चले, नहीं चले तो लकड़ी ले ले अल्लो भाई में तो वही चले। श्रीमद वक्र न की न कही, और प्रभुता अधिकार किसको मिल जा, अधिकार अनुवाद किसको बहरा नहीं बनाए, सुने ही नहीं कोई बात, चाहे एमपी हो और चाहे पीएम हो, कोई हो सुनते ही नहीं। बधिता प्रभुता बधिर न काहे, और मृगलोचनी के नयन सार, स्त्री के नयन के बाणों से ऐसा कौन है जिसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ है, और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो मान और मान के मद से अछूता रह गया। मान हो जाए मद न आए, असंभव बात, मान आने पर मद आ ही जाता है। जौवन ज्वर कहीं नहीं बलकावा, और जवानी का बुखार है उसने किसको नहीं बरगलाया। बुखार आवे ना आदमी चावे जी बोलने लग जाए, ऐसी जवानी के नशा में चावे जी बोले, बाप रे सामने बोल दे, मारे सामने बोल दे, लुगाई टावरा ने चावे जी बोल दे, ये बलकाना है, ये माने बहकना है। ममता ने किसके यश को नष्ट नहीं किया है, और ये ईर्ष्या ने किसके ऊपर कलंक नहीं लगाया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने शोक रूपी वायु से यूं डोला न हो। चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खाया है, और मनोरथ रूपी कीड़े ने किसके शरीर को नहीं खाया। शरीर तो है लकड़ी, और इसमें तरह तरह की कल्पना करते हैं, यूं हो जाए फिर यूं हो जाए फिर यूं कर ले यार फिर यूं कर ले यार, ए जो बाता है ए मनोरथ रूपी कीड़ा है, ए मायनी मायने इनका दीवड़ है, दीवड़ा खोखली कर देवे। और संसार में तीन चीज की इच्छा है बड़ी खराब, एक तो बेटा बेटी पोता पोती की इच्छा, एक धन की इच्छा, एक बड़ाई की इच्छा। सुतबित लोक ईशना तीनी, सुतेषणा वितेषणा और लोकेशना, ये तीन इच्छाएं होती है, ये किसकी बुद्धि को मलिन नहीं करती। एक बार महाराज जी पधारे कलकत्ते में, एक बूढ़ी माई थी, बहुत सत्संग की, उसका पियर परिवार भी सत्संगी और उसका ससुराल भी, महाराज जी जानते थे। कहा कि महाराज जी बहुत बीमार है, आजकल में ही शायद जा सकती है, तो चलो भाई। महाराज जी गए, बूढ़ी हुई, खूब बूढ़ी, वो बोलती थी थूक उछलता था, मुंह दांत वांत कुछ नहीं, बूढ़ी माई एकदम। महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा कि माँ जी अब देखो थाने जानो है तो थे भगवान ने याद रखो। तो क्या माई महाराज जी और तो कहीं को नहीं, मारे एक पड़पोतो को नहीं हो रही, पड़पोतो होना चाहिए, पड़पोतो होना चाहिए। तो महाराज जी किया कि माँ जी देखो थे ऐसे परिवार में थारो जन्म हुई हो, ऐसे परिवार में थारो अठे आणो हुई हो, थारा बेटा ने जानू, थारे ससुराल थारे ससुर पक्ष ने जानू, थारे पियर पक्ष ने जानू, इतना बढ़िया परिवार, अब थारे जाने री उम्र थे, कठे हो सोचो कि और तो कोई इच्छा को नहीं, महाराज जी भगवान री बड़ी है, मारे एक पड़पोतो हो जावे। वो कद पड़पोतो हुए, कद बड़ो हुए, और कद माजी री सेवा करी, माजी तो दूसरे दिन ही चला गया। आज जो इच्छा है ना सुतेषणा, माने बेटा बेटी परिवार की इच्छा, एक धन की इच्छा, एक बड़ाई की इच्छा, इसने बड़ों बड़ों की बुद्धि को मलिन कर दिया। कई के मति इन कृतन मलिनी, मलिन हो गई। ये सब माया का परिवार है गरुड़ जी महाराज। शिव जी डरते रहते हैं और ब्रह्मा जी भी डरते रहते हैं इस माया से, अपने लोग तो है ही क्या। और ये माया जो चलती है इसकी सेना बड़ी विचित्र है। सेनापति बताऊं कौन है? सेनापति कामादि मद भट्ट, ये तीन सेनापति हैं, तीन बड़े सेनापति। कौन? एक तो सेनापति है काम, एक क्रोध और एक लोभ। ये तीन बटालियन, तीनों बटालियन के तीन ये सेनापति, और दंभ कपट पाखंड ये सब उसके पीछे पीछे रहने वाले हैं। ये भाई भगवान की दासी है माया।
अब देखो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं काकभूषण जी, ये भगवान की दासी है और समुझे मिथ्या सोपी। और देखो इस माया के विषय में जब विचार करोगे तो कहता है ही नहीं। पूछ लो हर किसी से, एक शरीर रहेगा क्या? शरीर तो नहीं रहेगा, एक दिन मरोगे मरेंगे। अरे हमारे बाप दादे मर गए, हम कौन से यहां रहने वाले हैं? कोई पट्टा थोड़ी लिखाया, मरना पड़ेगा। सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, परंतु इतना होते हुए भी उनके वो समझ में नहीं आती बात। समझे मिथ्या सोपी, इसको मिथ्या बोल देते हैं परंतु छूटन, फिर भी माया का जो आकर्षण है वो छूटता नहीं है। उसके लिए क्या करो? भगवान को पुकारो। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। इसलिए हे नाथ, हे गरुड़ जी महाराज, मैं पैर रोप करके सत्य बात कहता हूं कि भगवान की कृपा के बिना ये छूटेगा नहीं। भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान इस माया से आप ही पिंड छुड़ाओ। घबरा करके कहो केवल आप कह देवान मन में पसंद रखा आ नहीं, जैसे कोई बीमारी आ जावे तो क्या भगवान से सच्ची प्रार्थना करा, यूं रोर सच्ची प्रार्थना करो, नहीं तो ये माया सारे संसार को नचा रही है। हे खगराज, ये माया सबको नचाती है, भगवान थोड़ा सा इस माया को टेढ़ी नजर से देखते हैं, माया सीधी हो जाती है। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा नाच नटी सहित समाजा। भगवान है ऐसा नहीं, ऐसा एकदम सीधी रहती है। हाँ काकभूषण जी, आपके मन में ये आ रहा है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ये सांप से कैसे बंधे? अरे सुनो, वे परमात्मा सच्चिदानंद घन अखंड अनंत अमोघ शक्ति वाले सबदर्शी और समदर्शी, सबको देखने वाले और समान रूप से देखने वाले, निराकार निरंजन अद्वय सुख संदोह भगवान, उन भगवान के यहां ये माया का प्रभाव मोह वगैरह नहीं चलता। तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है कि सर्प में कैसे बंध गए? तो सुनो देखो, भगत हे तू भगवान प्रभु, भगवान तो भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं और वे जब चरित्र करने लगते हैं तो करते 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 ऐसे साधारण हो जाते हैं जैसे कोई मामूली सा आदमी काम करता हो, यही भगवान की विशेषता है। अरे एक नट होता है, नाटक करने वाला होता है, वो भी जिस समय नाटक करता है अनेक वेश धारण करके नाटक करता करता भी वो अपने आप से कोई अपना अलग थोड़ी होता है। ऐसे ही भगवान ये नाटक करते हैं, ऐसा न होते भी वैसा नाटक करते हैं। तो हे उर्गारी, हे सांप के शत्रु, अर्थात आप उस सांप की बंद सब सर्प बंधन में ही तो भगवान की लीला देखकर मोहित हुए थे, वो तो केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए ऐसा करते हैं। जिनकी बुद्धि विषयों में फंसी रहती है वे भगवान पर भी आक्षेप करते हैं, भगवान काय धारो कृष्ण भगवान हो और माखन चोर चोर खातो, और छोरियारा जो घड़ा होता घड़ा में कांकरो लेर यू निशानो बांध घड़ो फोड़ देतो, और गोपन के मायने भाटो लेर फोड़ देतो, बेरा कपड़ा लेर भाग जातो और बेरे साथ बंसरी बजातो, वो कहीं थारो भगवान है भाई, समझ में आयो कौन थारो? तो गोस्वामी जी महाराज कहे समझ में, ऐडा आदमी समझ भी कौन सके? जेरा नेत्रा में दोष वे बिन सब चीज पीली पीली दिखे, ये आदमी ने खुद ने चक्कर आवे नहीं बिन मकान घूम तो दिखे, जो आदमी रेलगाड़ी में बैठे है और कन्नाली रेलगाड़ी खुद कन्नाली रेलगाड़ी चाले न खुदाली चालती भी दिखे कि मैं जा रही हूं, नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आप ही लेखा। ऐसे ही भगवान के विषय में लोग सपने में अज्ञान में पड़े रहते हैं बेचारे। वे व्यक्ति भगवान की माया को समझ नहीं सकते, निज अज्ञान राम पर धराई। जो जो व्यक्ति भगवान के ऊपर जो जो संदेह करते हैं समझना चाहिए उन्हीं का संदेह प्रकट हो रहा है। भगवान का चरित्र शुद्ध का साफ कांच के समान है, उसमें हमारा ही मुख दिखाई देता है। ऐसे भगवान के चरित्र में यदि किसी को खराबी दिखती है तो उसी की खराबी भगवान के चरित्र में दिखती है, और भगवान के चरित्र में किसी को अच्छा लगे तो वो अच्छाई भी उसी में दिखती है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहा सक्त दुख रूप, सुनो सुनो गरुड़ जी महाराज, जो आदमी कामी है, क्रोधी है और लोभी है, घर में आसक्त हुआ हुआ है, वो मूर्ख व्यक्ति भगवान की लीला को क्या जानेगा। जिसमें निर्गुण रूप तो बड़ा सुलभ होता है, पर सगुण की लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष भी होते हैं, वो सब बड़े अपने ज्ञान पूर्वक मन लगाकर बहुत गहराई से भगवान की लीला सुनते हैं। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि वाले ये लीला ऐसे कैसे की होगी। वो भगवान के भाव में डूबना चाहते हैं, ये क्या भाव है, भगवान ने परशुराम जी को किस भाव से कहा, वो समझ में नहीं आता। भगवान की लीला में उनको अनौचित्य नहीं दिखता, पर किस भाव से कौन सी लीला की इसका उनको पता नहीं चलता। तो फिर क्या होता है, वो बैठ करके भगवान की लीलाओं को और सुनते हैं, सुनते सुनते उनके अंदर भाव पैदा होते हैं। आपकी क्या बात कहूं, ये तो आपकी बात है। अब मैं आपको वो बात बताता हूं कि मुझे भी ऐसे ही मोह हो गया था। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोही, मेरे को जैसा मोह हुआ था वो अब मैं आपको मोह बताता हूं। अब काकभूषण जी अपना मोह बताएंगे।
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय
जय सीताराम 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 जय सीता
जय सीताराम